ओ विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण में अभ्यास के लिए 46वां श्लोक। त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् महावाक्येन लक्ष्यते स्वयं इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकौ आश्रयो लक्ष्यते यथा माया विद्ये विहाय एवम् उपाधि परजीवयोः अखण्डं सच्चिदानन्दम् परं ब्रह्मैव लक्ष्यते सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् अवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम् न दृष्टं न च संभवी विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः इदं गुणक्रिया जाति द्रव्यसम्बन्धवस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद् इति स्यताम्। महावाक्येन तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा पर और अपर दोनों आत्माओं की एकता सिद्ध हो जाती है। ये जो पहले कहा गया था पदार्थ ज्ञान के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए पदार्थ ज्ञान होना पहले जरूरी है। तत् इस पद का अर्थ क्या हुआ? तत्पद का अर्थ बताया जगतो यद उपादानम मायाम आदाय तामसिम निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्यते ब्रह्म तदगिरा। जो ब्रह्म तामसिक माया को उपाधि बनाकर समस्त जगत का उपादान कारण होता है, विशुद्ध सत्व माया को उपाधि बनाकर समस्त जगत का निमित्त कारण होता है। एक ही परमात्मा उपादान कारण भी हुआ, निमित्त कारण भी हुआ। तब श्रुति ने कहा अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये यतोरण नावि सृजते गृणते च यथा पुरुषात् संभवति केशलोमानी तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम्। मुंडक उपनिषद की श्रुति। जैसे मकड़ी अपने जाले के लिए खुद उपादान कारण भी है, खुद निमित्त कारण भी है, जैसे मनुष्य अपने सिर के केशों के लिए या नख के लिए खुद उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, जैसे पृथ्वी समस्त वनस्पतियों के लिए खुद उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, इसी प्रकार से परमात्मा समस्त जगत उत्पत्ति करने के लिए, जगत के लिए खुद उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। उपादान कारण कैसे बनता है और निमित्त कारण कैसे बनता है, तो ये बताया। जिस समय तामसी मायाम आदाय, प्रकृति या माया की जो तामसिक भाव है, तमोभाव है, उसको ग्रहण करता है तो वह खुद उपादान कारण बन जाता है। जिस समय सात्विक माया को ग्रहण कर लेता है तो निमित्त कारण बन जाता है। सब मिलाकर अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो परमात्मा है वह तत्पद का वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ ना, तत्त्वमसि इस वाक्य में दूसरा पद है त्वम। इस त्वम का वाच्यार्थ क्या है? यदा मलिनसत्त्वं तं कामकर्मादिदूषितं। यदा माने जिस समय, तत् परम ब्रह्म वही अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म जिसको शुरू में विद्यारण्य मुनि जी ने चिदानंदमय ब्रह्म कहा। काम कर्मादि दूषिताम मलिन सत्वम, काम कर्मादि वासनाओं से दूषित हुए हुए मलिन सत्व को उपाधि बनाता है, तब तमाम विश्व ब्रह्मांड का भोक्ता बन जाता है। वही ब्रह्म विशुद्ध सत्व को उपाधि बनाकर कर्ता बना, निमित्त कारण बना, कर्ता बना, और वही ब्रह्म मलिन सत्वोपाधि धारण करके भोक्ता बन गया। जो भोक्ता भाव की अवस्था है उसको त्वम पद के द्वारा कहा गया है। जो कर्ता भाव की अवस्था है उसको तत् पद के द्वारा कहा गया वाच्यार्थ में। जो भोक्ता भाव की अवस्था है उसको त्वम पद के द्वारा कहा गया है वाच्यार्थ में। तो ये तत्त्वमसि महावाक्य वाच्यार्थ में, जो सर्वज्ञ है वही अल्पज्ञ है, जो अल्पज्ञ है वही सर्वज्ञ है, ये अर्थ बताता है। जो सर्वशक्तिमान है वही अल्पशक्तिमान है, जो अल्पशक्तिमान है वही सर्वशक्तिमान है, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र है वह ही परतंत्र है, और जो परतंत्र है वही स्वतंत्र है। तो इस वाक्य के वाच्यार्थ सुनकर बड़ा अटपटा लगता है। ऐसा अर्थ कैसे संभव होगा भाई, एक ही वाक्य में इस प्रकार का विरोधाभासी अर्थ कैसे संभव होगा। इसलिए ये वाक्य कभी भी वाच्यार्थ में एकता करने के लिए वाक्य का प्रयोग किया नहीं है। बस तत्त्वमसि ये वाक्य वाच्यार्थ में एकता करने के लिए ये वाक्य प्रवृत्त हुआ नहीं है। इस किस अर्थ में महाराज? लक्ष्यार्थ में। लक्ष्यार्थ में तो एकता बताने वाले ये वाक्य, तो लक्ष्यार्थ में कैसे महाराज? त्रितयिमपि तं मुक्त्वा परस्पर विरोधिनिम्। जिस अंश में परस्पर विरोध हो रहा हो, जिस अंश के चलते एकता संभव नहीं रहा हो, उस अंश को हटा दो। मिलकर नहीं बैठे तो उसको हटा दो, और क्या, सब जगह ही करते हैं भाई। आपके घर में दो बच्चे हों, दोनों बेटे की शादी हो गई, तो दो बेटे की जगह दो बहू आ गई घर में, दो बेटे के साथ साथ दो बहुएं भी आ गई। आप यही चाहोगे कि दोनों बेटे और दोनों बहू घर में मिलकर रहे, मां बाप तो यही चाहेंगे ना। अब जब दोनों बहू मिलकर नहीं रह सकते हैं तो क्या करते हो, हटा देते हो? और क्या, तुम अलग रहो, मिलकर नहीं रह सकते तो अलग रहो। ये तो लोक व्यवहार में भी तो तुम्हारा नियम है कि नहीं, बोलो? मिलकर नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। अरविंद केजरीवाल ने योगेंद्र को हटा दिया। मिलकर नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ, बस खत्म हो गई बात। मिलकर रह सकते हो तो रहो, नहीं रह सकते तो अलग। ये देख लो, तो कहा परस्पर विरोधिनिम, तो परस्पर विरोध कौन कर रहा है? तो उपाधि के चलते परस्पर विरोध हो रहा है, तो उपाधि में विरोध आ रहा है, समझे? नहीं, उपाधि में विरोध आ रहा है, तो दोनों विरोध करने वाले उपाधियों को हटा दो। एक उपाधि को रखो, दूसरे उपाधि को हटा दोगे तो अन्याय हो जाएगा। इसीलिए आजकल घर में माता पिता बच्चों से मिलकर नहीं रहते, अलग रहते। एक बच्चे को साथ में रखोगे तो दूसरा कहेगा देखो हमको अलग किया, उसको साथ में रखा। आखिर विरोध हुआ है तो दोनों के झगड़ा तो दोनों के बहू का हुआ है ना, दोनों बहू में। अब बड़ी बहू को निकालो, छोटी बहू को साथ में रखो तो क्या होगा? अन्याय होगा कि नहीं? पक्षपात किया, उसको साथ में रखने के लिए मुझे निकाला। बड़ी वाली कहेगी कि नहीं बोलो? और बड़ी को रखा और छोटी को निकाला तो छोटी क्या कहेगी? उसको साथ में रखने के लिए मुझे निकाला, अन्याय किया। तो समझदार माता पिता क्या करेंगे? दोनों जाओ अलग, हट जाओ, हम दोनों यहां रहेंगे, वो अपने पति पत्नी। अरे तुम लोग पैदा नहीं हुए थे, तुम बहू बनकर घर में नहीं आई थी, तभी अपना घर का काम तो हमने ही किया है, इसलिए हम अपना काम अपने ही करेंगे, जाओ तुम लोग। दोनों को हटा दो तो न्याय हो गया कि नहीं है? अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, इन दोनों को मिलकर रहने नहीं दे रहा है कौन? अल्प उपाधि और सर्व उपाधि। ध्यान देना, एक की उपाधि अल्प हो गई, दूसरे की उपाधि सर्व हो गई, इसलिए दोनों मिलकर नहीं रह पा रहे हैं, एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो बोले दोनों उपाधि छोड़ दो, हटा दो, ज्ञ ज्ञ, समझे कि नहीं? ज्ञान के साथ ज्ञान का विरोध होने वाला है ही नहीं, क्योंकि पहले बता आ रहे हैं ज्ञान दो नहीं हो सकता है, ज्ञान एक ही होता है। ज्ञान एक होता हुआ भी ज्ञान के उपाधि के चलते, विशेषण के चलते ऐसा लग रहा है कि ज्ञान भी दो हैं। ज्ञान में जब उपाधि आता है, विशेषण आ जाता है, तो ऐसे लगने लगता है कि ज्ञान भी दो है। जैसे आप लोगों को ये लगता है, घटक ज्ञान अलग है, मठक ज्ञान अलग है, लगता है कि नहीं? आप लोगों को बोलो, घटक ज्ञान अलग है, मठक ज्ञान अलग है। जिस समय घटक ज्ञान हुआ हुआ होता है, ये जरूरी नहीं कि उसी समय मठक ज्ञान भी हो। जिस समय मठक ज्ञान हुआ हुआ होता है, ये जरूरी नहीं कि उसी समय घटक ज्ञान भी हुआ हुआ हो। कई बार किसी को घटक ज्ञान होता है, मठक ज्ञान नहीं होता। आज तो मेरी समस्या तो यही ना है, बोलो, तुम्हारी समस्या यही है कि नहीं? मुझे जितनी वस्तुओं का ज्ञान है, उतनी वस्तुओं का ज्ञान क्या तुम सभी को है? बोलो, मुझे जितनी वस्तुओं का ज्ञान है, उतनी वस्तुओं का ज्ञान तुम्हें है, या तुम्हें जितनी वस्तुओं का ज्ञान है, उतनी वस्तुओं का ज्ञान मुझे है? हैं? तुम कार चला सकते हो, कार चलाने का ज्ञान तुम्हें है कि नहीं? हैं? बोलो। तो जरूरी है कि वो कार चलाने का ज्ञान मुझे भी है? तुम खम्मन ढोकला बना सकते हो, कि जरूरी है कि खम्मन ढोकला मैं भी बनाऊं? तुम्हारे पास खम्मन बनाने का ज्ञान है, मेरे पास नहीं है। तुम्हारी हमारी समस्या क्या है? सोपाधिक ज्ञान सभी के पास समान रूप में नहीं रहता, तो इसलिए विरोध किसमें है बोलो, सोपाधिक ज्ञान यानी विशेषण से युक्त ज्ञान, घट विशेषण ज्ञान घट ज्ञान, मठ विशेषण ज्ञान मठक ज्ञान, छठ विशेषण ज्ञान छठक ज्ञान। तो संसार में तमाम जितने भी व्यावहारिक ज्ञान होते हैं सविशेष ज्ञान होता है कि निर्विशेष ज्ञान होता है? सविशेष ज्ञान होता है। वेदांत की भाषा में उसको क्या कहेंगे? सोपाधिक ज्ञान। ये देख लो, इसीलिए सोपाधिक ज्ञान में ही परस्पर विरोध जैसा लगता है, और सोपाधिक ज्ञान में ही अनेक भिन्न भिन्न जैसा लगता है। ऐसा कैसे लगता है ज्ञान में? क्योंकि उपाधि भिन्न भिन्न होने के कारण ज्ञान भी भिन्न भिन्न है, ऐसा लगने लग जाता है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा क्यों लगता है? कब लगता है? क्योंकि दोनों की उपाधि भिन्न भिन्न है, इसलिए ऐसा लगने लगता है कि परमात्मा अलग है जीवात्मा अलग है। समझे कि नहीं बोलो? हैं? परमात्मा अलग और जीवात्मा अलग होने में कारण क्या बताया? उपाधि बताया। घट ज्ञान और पटक ज्ञान अलग अलग होने में कारण क्या बताया? घट उपाधि और पट उपाधि मठ उपाधि। तो परस्पर विरोधी जो उपाधि हैं विशेषण है उनको हटा दो, क्योंकि परमात्मा की उपाधि सर्व और जीवात्मा की उपाधि अल्प। ये सर्व और अल्प मिलकर नहीं बैठ रहे, एक साथ नहीं मिल पा रहे, घट और मठ मिलकर नहीं बैठ पा रहे हैं। समझे कि नहीं? तब जो मिलकर नहीं बैठ पाते उनको हटा दो। तब हुआ क्या? परम सर्व उपाधि वाला आत्मा, परम विशेषण वाला आत्मा, अपर विशेषण वाला आत्मा, अल्प उपाधि वाला आत्मा। तब पर उपाधि अल्प अपर उपाधि, सर्व उपाधि अल्प उपाधि। जो पर है वो अपर नहीं, अपर जो है पर नहीं, ये परस्पर विरोधी है। इन दोनों को जब तुम भागत त्याग लक्षण द्वारा हटा देते हो तो आत्मा आत्मा में विरोध नहीं होता, ज्ञान ज्ञान में विरोध नहीं होता। विरोध कहां हो रहा है? घट और मठ में विरोध हो रहा है। मठ में तुम सो सक रहे हो, घट में सो नहीं सकते हो। घट में पानी भर के ले जा सकते हो, मठ में पानी भर के ले जा नहीं सकते हो, इसलिए उपाधि है। अब घटक ज्ञान मठक ज्ञान 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 में विरोध न होने के कारण ज्ञान मात्र में एकता है, ज्ञप्ति मात्र में एकता है। ज्ञप्ति की विशेषता में भिन्नता है, ज्ञप्ति मात्र। निर्विशेष ज्ञान में ध्यान देना, निर्विशेष ज्ञान में विरोध नहीं और निर्विशेष ज्ञान एक है। निर्विशेष ज्ञान में विरोधाभास नहीं आ सकता है, निर्विशेष ज्ञान अलग अलग नहीं हो सकते। सविशेष ज्ञान अलग अलग होते हैं, ये बात पहले कह के आ चुके हैं। मासाब्दैव कल्पेषु गतागम्येषु अनेकदा नोदेति नास्तमित्येका संबित एषः स्वयं प्रवाह। तो संबित को एक एक बनाकर रख दिया, वहां संमित को क्या, यहां आत्मा को एक करना है, एक ही चीज है। त्रितयम् अपिताम् मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम् अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। महावाक्य तत्त्वमसि, ये महावाक्य के द्वारा, लक्षणावृत्ति के द्वारा अखंड सच्चिद आनंद, सत दो नहीं हो सकते, चित दो नहीं हो सकते, आनंद दो नहीं हो सकते, आनंद छोटा आनंद बड़ा आनंद ऐसा नहीं होते। मेरा एक चेला है नेपाल में रहता है, मैं आश्रम में नहीं रहता हूं तो वही प्रवचन करता है, वही स्वाध्याय करता है। सभी वहां के भक्त लोग उसको छोटे गुरु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सभी लोग? छोटे गुरु। और मुझे क्या कहते हैं वो लोग? बड़े गुरु। शरीर मेरे से दुगना है उसका। शरीर देखा जाए तो बड़े गुरु वो है, बड़ा शरीर है भाई, लेकिन मुझे कहते हैं बड़े गुरु, उसको कहते हैं छोटे गुरु। अब कोई आए आश्रम में नया व्यक्ति कि गुरु जी कहां है, तो कर्मचारी फट से पूछ लेते हैं कौन से गुरु। ये कर्मचारी फट से उससे पूछ लेते हैं नए व्यक्ति से कौन से गुरु। बोले वो गुरु हमारे जो गुरु। बोले आपके गुरु? यहां तो दो गुरु हैं महाराज, एक छोटे गुरु हैं एक बड़े गुरु हैं। आप कौन से गुरु को पूछ रहे हो? बोले आत्मानंद स्वामी जी। अच्छा अच्छा वो बड़े गुरु, वो आजकल बंबई गए हुए हैं। लो जी फिर छोटे गुरु कौन है? बोले अद्वैतानंद। वो कहां है? बोले वो यही है। अब गुरु भी दो हो गए कि नहीं, किसके चलते महाराज? उपाधि के चलते। उसके उस गुरु में छोटा उपाधि लग गया, इस गुरु में बड़ा उपाधि लग गया भाई। तृतयम् अपिताम् मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम् अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते न कि वाच्यते। महावाक्य ने वाच्यार्थ में एकता नहीं बताई है, लक्ष्यार्थ में एकता बताई है। कैसे महाराज? तो जैसे आप लोग व्यवहार में करते हो। लौकिक दृष्टांत दिया विद्यारण्य मुनि जी ने, स्वयं इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः। ये देख, त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। यथा माने व्यवहार काल में जैसे, स्वयं देवदत्त ये वाक्य प्रयोग होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? यह वही देवदत्त है। स्वयं देवदत्त स अयम, अयम स देवदत्त। अब इसका वाच्यार्थ विचार करो। स माने क्या? वह माने क्या? तद्देश तत्काल विशिष्ट, तद्देश तत्काल तदुपाधि विशिष्ट देवदत्त। अयम का अर्थ क्या हुआ? एतत् देशा एतत् काल एतत् उपाधि विशिष्ट देवदत्त सो अयम देवदत्त, ये वाच्यार्थ हुआ। तद्देश तत्काल तद उपाधि, ये सब भूतकाल हो गए, परोक्ष हो गए, समझे कि नहीं। तद्देश परोक्ष देश, तत्काल भूतकाल, तद उपाधि छोटी उपाधि या अन्य कोई उपाधि। अयम माने एतद देश, आज जहां है वहां। एतत काल इस समय, एतत उपाधि जो तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो ये उपाधि। अब पहले के उपाधि और अब के उपाधि में फर्क आ गया, कैसे एकता हो सकती है। पहले का समय और आज के समय में फर्क आ गया, पहले का भूतकाल आज का वर्तमान काल, पहले के जगह और आज का जगह में फर्क आ गया, पहले का दिल्ली आज का बंबई, देख लो कैसे एक हो सकता है। लेकिन बोलने वाला ने बोल दिया क्या, यह वही देवदत्ता है। तो इन सब का अर्थ मिला करके दी लेते हैं तो वाक्य का अर्थ बिल्कुल गलत हो जाता है। तो अर्थ ग्रहण करने वाला क्या करता है, तद देश को भी ध्यान में नहीं लेता, ये तद देश को भी ध्यान में नहीं रखता, तद काल को भी ध्यान में नहीं रखता, ये तद काल को भी ध्यान में नहीं रखता, तद उपाधि को भी ध्यान में नहीं रखता, ये तद उपाधि को भी ध्यान में रखता नहीं रखता, सिर्फ देवदत्त मात्र को ध्यान रखता है। और देवदत्त तो देवदत्त एकता हो गई। दृष्टांत, कोई तीन आदमी खड़े थे, तीनों बचपन के मित्र थे, और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में खेलते थे, एक ही गांव में रहते थे। बाद में पढ़ाई पूरी हो गई और तीनों अलग अलग हो गए। बहुत दिनों के बाद उन तीन में से एक व्यक्ति सन्यासी बन गया, मेरा जैसे। उन तीन में से एक व्यक्ति क्या बन गया, सन्यासी बन गया। दो गृहस्थी बन गए। अब एक जो सन्यासी है, घूमते घूमते उसको कहां से पुराना संस्कार याद आ गया, मेरा बचपन का मित्र बंबई में बीएमसी का कमिश्नर होकर बैठा है, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर हो गया, वही बड़ा ऑफिसर हो गया। उसको कैसे पता लगा, तो पूछते पूछते गया। तो मुलाकात हो गई, तो मुझे पहचानते हो, तो उसने पहचानने से मना कर दिया। तो कहा, अरे भाई मैं वही हूं फलाना। अरे तुम वही हो, ये क्या रूप बना रखा है। बोले हम साधु हो गए। अब तीसरा जो मित्र था वो भी यहीं आया, बंबई में ही था, वो बड़ा व्यापारी हो गया था। तो वह कमिश्नर और व्यापारी को तब जान पहचान हो गई थी पहले, अब ये साधु का ये नया टपक पड़ा तीसरा। बोले वो दूसरा कहां है, उस साधु ने पूछा। अरे वो भी यही मुंबई में व्यापारी है, बड़ा व्यापारी हो गया वो। अच्छा चलो उसको फोन करते हैं, बुलाते हैं। फोन किया, बुलाया, तो जो ऑफिसर था उसने उस व्यापारी को कहा, अरे फलाना इसको पहचानते हो, वो साधु बनकर सिर मुड़ा के बैठा था, वो क्या पहचाने का व्यापारी, वो ऑफिसर ही नहीं पहचान पाया था पहले, तो व्यापारी क्या पहचानेगा। हाँ हाँ, ये महात्मा को तो कभी देखा नहीं मैंने। अरे क्या बात करता है, यह वही देवदत्त है। किसने? दूसरे ने तीसरे को बताया पहले वाले के प्रति इशारा करके, यह वही देवदत्त है। अब क्या हुआ, यह माने आज यहां बैठा हुआ साधु होकर बैठा हुआ साधु उपाधि से युक्त, वही माने जिस समय तुम और हम लोग पढ़ते थे वो गांव, वो स्कूल, वो कॉलेज। अब वो स्कूल ये जगह नहीं है, प्रेमपुरी है वो स्कूल है, वो देश, वो काल और वो उपाधि जिस समय वो बचपन का उपाधि था, विद्यार्थी की उपाधि थी। अब ये देश, ये काल और ये उपाधि, इस समय साधु की उपाधि आ गई। बोलो कौन सी उपाधि आ गई? अब पहले कौन सी उपाधि? विद्यार्थी की। पहले विद्यार्थी की उपाधि थी, अब साधु की उपाधि आ गई। और विद्यार्थी और साधु की उपाधि मेल खाता है कभी? तो एकता कैसे हो? तो बोले वो साधु की उपाधि भी हटा दो, ये साधु की उपाधि भी हटा दो, वह विद्यार्थी की उपाधि भी छोड़ो, वो स्कूल का भी ध्यान छोड़ो, वो देश भी छोड़ो, वो काल भी छोड़ो, ये देश भी छोड़ो, ये काल भी देश छोड़ो, केवल देवदत्त पर ध्यान दो, तो ये वही देवदत्त है। तो देवदत्त देवदत्त तो खाली देवदत्त, निरुपाधिक देवदत्त में आज का देवदत्त निरुपाधिक देवदत्त और उस समय का देवदत्त निरुपाधिक देवदत्त में कोई विरोध नहीं। बड़ा गहरा प्रसंग है, इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि महावाक्य का ये शोधन है। ये स्वयं इत्यादि वाक्येषु विरोधा तदिदंतयो त्यागेन भागयोरेकम्। पहले वाक्यार्थ का भाग करो, वाक्यार्थ का वाच्यार्थ का भाग करो, फिर उसके बाद विरोधी एक भाग का परित्याग करो, अविरोधी एक वाक्य में एकता सिद्ध हो जाएगी। ये त्यागेन भागयो एकम आश्रयो लक्ष्यते यथा। इसलिए मैं एक दूसरे उपाय से भी समझाया करता हूं, दृष्टांत समझो तो त्राष्टांत भी समझ में आ जाए। महात्मा कहते हैं जो सुख है वो दुख है, जो दुख है वो सुख है, सुख दुख एक ही है। समझे कि नहीं? ये मेरी ये अपनी अपने फॉर्मूला है। महावाक्य को मैं इस तरह शोधन करके समझाया करता हूं। संसार में सुख और दुख दोनों एक ही हैं। जिसको तुम सुख कहते हो वो दुख है, और जिसको तुम दुख कहते हो वह सुख है। इसका मतलब क्या हुआ? सुख दुख दोनों एक ही है। अब महाराज ये कैसे आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, दुख दुख अलग है, सुख सुख अलग है, दुख कोई चाहते नहीं, सुख कोई छोड़ता नहीं है, दोनों एक कैसे है महाराज? बोले आते तो दोनों एक ही साथ हैं, रहते दोनों एक ही साथ हैं, जहां सुख रहता है वहीं दुख भी रहता है। रहता है कि नहीं? तुम गाड़ी रखते हो सुख के लिए रखते हो कि दुख के लिए? सुख के लिए। और ड्राइवर हड़ताल कर दिया उस दिन तो सुख होगा कि दुख होगा गाड़ी से? है? तो गाड़ी ही दुख का कारण बना कि नहीं? तुम्हारे पास गाड़ी थी ही नहीं तो कभी भी ड्राइवर के बारे में सोचा था? तो अपने हिसाब से अपना व्यवहार करते थे प्रेमपुरी आश्रम में, कितनी बजे निकलूं तो कितनी बजे पहुंचूं, हैं? अपना हिसाब लगाते थे कि नहीं? अब हुआ क्या, अब रोज ड्राइवर के अपने गाड़ी से आते थे तो 5 मिनट में घर से निकलकर फट प्रेमपुरी आश्रम आ जाते थे, ये सुख था। अब उस दिन भी उसी हिसाब से आप घर में बैठे रहे, ड्राइवर आएगा 5 मिनट में चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, क्या जल्दी करना है? उस दिन ड्राइवर आया नहीं। अब घड़ी देखे जा रहे हैं, भाई आया नहीं ड्राइवर? बोले आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। फोन किया, क्यों नहीं आया तू आज? महाराज मुझे तो बहुत बुखार हो गया इसलिए मैं नहीं आया। अब दुख हुआ कि नहीं बोलो? दुख क्या हुआ? मैं अब प्रेमपुरी नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेट हो गए। लो देखो तो सही, अरे तो नहीं आना था तो पहले ही फोन कर देना था, हम सुबह ही दूसरी विकल्प करते, या तो बस के या टैक्सी या पैदल जाते। ले जी, तो सुख में दुख है और दुख में सुख है, और जो रोज पहले जिसके पास पहले से गाड़ी नहीं है, पहले से ही पैदल चल चल के आते थे, 1 घंटा 1/2 घंटे पैदल चलकर आते थे, हैं? रोज आते थे ना नियमित, 1/2 घंटा पैदल चल के आते थे, उनको अब ड्राइवर ने हड़ताल कर दी ये खबर सुनकर दुख होगा, क्योंकि वो तो 1/2 घंटा पहले घर से निकल चुके हैं, तो आए चाहे ना आवे क्या फर्क पड़ता है, चलो हम तो आ गए, सुख हो गया कि नहीं? अरे ये संसार सब ऐसे ही है, सर्वत्र ये नियम है। भोजन बनाने वाले बाई रख लिया सुख हो गया, नहीं आई तो दुख हुआ, तनख्वाह जिस समय वो ज्यादा मांगती है तो दुख होगा। हेलो जी, सुख दुख सब साथ ही है। बढ़िया घर बंबई में मिल गया तो सुख हो गया, जब सोसाइटी का बिल आता है तो दुख हो गया, पैसा आ गया तो सुख हो गया, जब इनकम टैक्स का बिल आ गया तो फिर दुख हो गया। ये आते हैं, मिलकर आते हैं सुख दुख का। इसीलिए तो नीतिकारों ने कहा ना, दिन रात्रिवत है, दिन रात्रिवत श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपर्कत्व विविनक्ति धीरा, दोनों मिलकर आते हैं महाराज। अब सुख दुख एक कैसे है तो मैं इसको महावाक्य को शोधन करके बताया करता हूं। सुख लेखो स प्लस उ प्लस ख है ना, क्या हुआ? सुख इक्वल टू सुख। अब फिर उसके नीचे लिखो दुख, द प्लस उ प्लस ख इक्वल टू दुख है ना। अब ये सुख में और दुख में विरोध किस अक्षर का है? एक ही अक्षर का विरोध है ना, स और द का विरोध है। उ और ख में कोई विरोध है? सुख में लिखा गया उ और सुख में लिखा गया ख, वही उ और वही ख दुख में प्रयोग हुआ है कि नहीं है? वो ऊ और वही ख, दुख में प्रयोग नहीं करोगे, सुख में प्रयोग किया हुआ ऊ और ख को दुख में प्रयोग नहीं करोगे तो दुख लिख पाओगे? या दुख में प्रयोग हुआ हुआ ऊ और ख को सुख में प्रयोग नहीं करोगे तो सुख लिख पाओगे? क्या विरोध हुआ बोलो? ऊ और ख में तो कोई विरोध है ही नहीं, विरोध के में किस में है? द और ख में, द और ख को हटा दो, ऊ ख ऊ ख, ऊ ख न सुख है, ऊ ख न दुख है, बोलो दोनों एक है कि नहीं है? इसीलिए कहता हूं ना, उ माने उमा, ख माने महेश्वर है, ख का अर्थ होता है ब्रह्म, कम ब्रह्म कम ब्रह्म है, ख माने क्या हुआ? ब्रह्म, कम ब्रह्म कम ब्रह्म, कम आत्मा खम आत्मा, ये देखो, उ माने उमा, उमा महेश्वर, बोलो उमा महेश्वर के कृपा के बिना तुम जिंदे नहीं रहोगे, जिंदे रहे बिना न तुम्हें सुख होगा न दुख होगा। जब तुम ही नहीं रहोगे तो सुख होगा, तुम ही नहीं रहोगे तो दुख होगा, तो तुम्हें क्या सोचना है? सुख में भी उमा महेश्वर है, दुख में भी उमा महेश्वर है, तो भाई क्यों घबराना है भाई? इसीलिए सुख में फूल हो नहीं, दुख में भूलो नहीं, महावाक्य का याद कर लो भैये, और आगे क्या कहेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्ति शान्तिः। ओम।